चैप्टर 12। अब आगे। देवांश के रूम में दिशा, जो कि घिरने के डर की वजह से देवांश के कंधे को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि वे गिरी नहीं है बल्कि किसी ने उसे संभाल लिया है, वैसे ही वे अपनी आंखें खोल देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि देवांश उसे बचाने के लिए उसे गले लगाया हुआ है। पर देवांश असलियत में क्या कर रहा था, वे हमारी भोली भाली दिशा कहाँ ही समझ सकती थी। दिशा जब देखती है कि वे और देवांश काफ़ी करीब है तो वे जल्दी से अपने कदम पीछे लेने वाली थी, मगर वे अपने कदम पीछे नहीं ले पाती क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि देवांश ने उसकी कमर को पकड़कर रखता हुआ है। वे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी क्योंकि वे अपने शरीर पर देवांश के शरीर की छुअन को महसूस कर पा रही थी। देवांश का खुला सीना दिशा के शरीर को बार बार छू रहा था, दूसरा देवांश जो ऑफिस के आने के बाद अभी अभी शावर लेकर आया था, जिसकी उसके शरीर के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसके उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था क्योंकि वे कभी भी इस तरह से किसी के करीब नहीं आई थी, ना ही किसी को आने देना चाहती थी, इसलिए वे देवांश को आवाज़ लगाते हुए बोली, सर प्लीज़ छोड़िए मुझे जाना है। दिशा के बोलने से देवांश अपनी आँखें कसकर बंद कर लेता है क्योंकि दिशा के बोलने से उसकी गर्म सांसें देवांश अपने सीने पर महसूस कर सकता था, जिसके उसके शरीर में एक अलग ही एहसास पैदा हो रहे थे। वे दिशा के ऐसा करने से बहक रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिशा के गर्दन से अपने चेहरे को निकाल अपना चेहरा दिशा के चेहरे के करीब ले आते हुए बोला, मिस दिशा, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वहीं दिशा, जो पहले ही काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, अपने चेहरे के इतने करीब देवांश का चेहरा देख वे जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है क्योंकि देवांश के बोलने से देवांश की गर्म सांसें उसे सीधा अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसके उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से बोली, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ अब आप मुझे छोड़िए। इतना बोल वे देवांश से दूर होने की कोशिश करने लगती है। वहीं देवांश दिशा को खुद से दूर होने की इतनी जल्दबाजी देखता है तो उसे गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन ना लाते हुए वे दिशा को छोड़ देता है। वहीं दिशा जैसे ही ये महसूस करती है कि देवांश ने उसे छोड़ दिया है, वैसे ही वे देवांश के 10 कदम की दूरी पर जा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जैसे कि उसने अब तक अपनी सांसें रोक रखी हो। वहीं देवांश, जो दिशा के यूं खुद के दूर जाने से काफ़ी गुस्सा था, जब वे दिशा का ऐसा रिएक्शन देखता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वे अपने मन में बोला, माई गुड गर्ल, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी तुम्हारा ऐसा रिएक्शन है, जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तब तुम्हारा क्या हॉल होगा। इतना बोल वे मुस्कुराते हुए दिशा को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और परी ने 4th और 5th फ्लोर को छोड़कर सारा घर देख लिया, पर उन्हें ना तो दिशा मिली और ना ही रूही, जिसके वे थक हार कर वापस हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वहीं परी रूही और दिशा की चिंता करते हुए अर्जुन से कहती हैं, तुझे क्या लगता है रूही और दिशा कहाँ गई होंगी? कहीं वे गलती से 4th या 5th फ्लोर पर तो नहीं चली गई? चल ना हम एक बार 4th फ्लोर पर देख कर आते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है रूही 5th फ्लोर पर जाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार 5th फ्लोर पर जाने से मना किया है। ज़रूर हो ना हो रूही और दिशा 4th फ्लोर पर ही होंगी। परी की बात सुनकर अर्जुन बोला, तू पागल तो नहीं हो गई? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं ना तो 4th फ्लोर पर जाऊंगा ना तो 5th फ्लोर पर, क्योंकि मुझे उन दोनों शैतानों से काफ़ी डर लगता है। वैसे भी तूने कहा ना रूही 5th फ्लोर पर नहीं जाएगी, तो ज़रूर 4th फ्लोर पर ही होगी, एंड मुझे नहीं लगता देवांश भाई उन दोनों लड़कियों को देख कुछ कहेंगे सिवाय उन्हें वापस जाने से अलावा, पर अगर हम उन शैतानों के पास गए तो वे शैतान हमें कच्चा ही निगल जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे दोनों अपने आप आ जाएंगी। इतना बोल वे आराम से फैल कर बैठ जाता है। वहीं परी उसे यूं बेफिक्र होकर आराम करता हुआ देख बोली, तू सच में रूही से शादी करने के लिए सीरियस है ना? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुझे रूही की कोई फिक्र नहीं है, कल को अगर वे किसी प्रॉब्लम में हुई तब तो तू उसे वहीं अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग आएगा। अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन तुरंत सीधा बैठ जाता है और परी को देख बोला, दी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच में रूही से शादी करना चाहता हूँ, वे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं बस अपने 2 शैतान भाइयों को छोड़कर उसे सबसे प्रोटेक्ट करूँगा, वैसे भी मेरे शैतान भाइयों से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। अर्जुन की बात सुनकर परी अपना सर ना में हिला आराम से बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई का कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और अर्जुन और परी को देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें रूही और दिशा को ढूंढने के लिए भेजा था ना, वे दोनों कहाँ हैं? सुमन जी की बात सुनकर परी सुमन को सच बताने ही वाली थी कि तभी अर्जुन परी को बीच में रोकते हुए अपनी मॉम से झूठ कहते हुए बोला, मॉम वे दोनों अभी आती ही होंगी, क्योंकि उन्हें और घूमना था, बस थोड़ी देर में वे घूम कर आ जाएंगी। सुमन अर्जुन की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है, फिर घर के एक सबसे पुराने नौकर को बुला रुद्र और देवांश को डिनर के लिए बुलाने को बोल देती है। सिर्फ 2 ही नौकर थे जो रुद्र और देवांश के फ्लोर पर जा सकते थे और उनके रूम की सफाई कर सकते थे। एक नौकर आज आया नहीं था, इसलिए जो आया था उसे ही सुमन रुद्र और देवांश को बुलाने को बोल देती है।
उसे मालूम था कि रुद्र आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वे एक बार कोशिश करके देख लेना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में रूही जैसे ही ये बोलती है कि रुद्र होता कौन है, उस पर इतनी पाबंदियां लगाने वाला, जिसे सुन रुद्र जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। कुछ देर बाद वे अपनी हंसी रोक रूही की हल्की ग्रीन आंखों में देखते हुए कहता है, रूह मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और मुझसे ही तुम्हारा वजूद है। बहुत जल्द तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर क्या हक है और किस हक से मैं तुम्हें ये सब कुछ बोल रहा हूँ। रूही जो रुद्र की हरकतों से अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, दूसरा रुद्र का यूं पागलों की तरह हंसना उसके रूह को भी डरा रहा था। ऊपर से अभी अभी रुद्र ने उसके जो जो बातें बोली वे सब उसके सर के ऊपर से निकल गईं। उसे रुद्र की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आई थी,
पर वे इतना समझ गई थी कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी पूरी तरह से साइको है और ये साइको उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसे जल्द से जल्द इस साइको से दूर जाना होगा, वरना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा।